ઓમ શાંતિ. જ્ઞાન સૂર્ય શિવબા વાકે, માસ્ટર સૂર્ય, સદા તેજસ્વી, પ્રકાશમય ઔર શક્તિશાલી. સબકો એસા અનુભવ કરને ઔર કરાને વાલે, દિવ્ય શક્તિઓ કે અસ્ત્ર શસ્ત્રધારી સૂરજભાઈ આજ હમારે બીચ પહોંચે હૈ. ભઠ્ઠી કા આજ લાસ્ટ દિન હૈ, લેકિન બહુત હી શક્તિશાલી બાતે આપસે પ્રાપ્ત હોગી. હમ દિલ સે આપકા એક હાથ કી તાલી સે સ્વાગત કરતે હૈ. સ્વાગત હૈ, સ્વાગત હૈ, સ્વાગત હૈ. આપ પુરાને બાબા કે અમૂલ્ય રત્ન, કરીબ 69 સે પહેલે મેં સમજતી હું ઇસી યજ્ઞ મેં સમર્પિત હોકર કે સેવાએ દે રહે હૈ. લંબી અલૌકિક જીવન કી યાત્રા મેં આપને કઈ પ્રકાર કે બાબા કે સત્ય જ્ઞાન કો પ્રયોગ કરકે, સત્ય કેસે હૈ વો ખુદને ભી અનુભવ કિયા, અનેકો કો ભી અનુભવ કરાયા. અનેક સમસ્યાઓ કા સમાધાન કરને વાલે, આદિ સે લેકર અભી તક સમાધાન સ્વરૂપ હોકર ચલે, ક્યોંકિ આપકે સામને ભી કઈ એસી બાતે સમસ્યાએ પરિસ્થિતિ જરૂર આઈ હોગી, ઔર ઉસમે આપને જો સોલ્યુશન કિયા ઔર ઉસકી અચ્છી રિઝલ્ટ આપને પાઈ, તો આપકો પ્રેરણા હુઈ કે ઔરો કો ભી ગાઈડ કરે. તો આપ સબકો માલુમ હોગા કે પીસ ઓફ માઇન્ડ મેં ભી હર રોજ 7:30 સે શામ કો 7:30 સે 8 સમસ્યા ઔર સમાધાન કા એપિસોડ ટોક શો હમ જો દેખ રહે હૈ, ઉસમેં કઈઓ કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર આપ જ્ઞાનયુક્ત રીતિ સે ઔર યોગ કે પ્રયોગ કરને કે બાતે બતા કરકે કર રહે હો. આપકે પાસ ઇતને ફોન્સ ભી આતે હૈ સમાધાન કે લિયે, ઔર રાહત ભી સબકો અનુભવ હોતી હૈ જો સહજ રીતિ સે સરળ રીતિ સે આપ ઉનો કો ગાઈડ કર રહે હો. તો આજ એસી વિશેષ આત્મા હમારે બીચ હૈ, એસી આપકે લિયે બોલને કી દિલ હોતી હૈ કે આપકી કાર્ય શક્તિ હૈ મહાન, આપને સદા જલાઈ હૈ કાર્યો કી મશાલ. તો એસી મશાલ લેકર સાલો સે આપ ઇસ માર્ગ પર આગે બઢ રહે હો મંઝિલ કી ઓર. અભી તો મંઝિલ કી સમીપ પહોંચે હુએ હો, એસી આત્મા સે હમ આજ મનોબલ ઔર મનસા સેવા કે બારે મેં અચ્છી તરહ સે સ્પષ્ટીકરણ આપ બતાએંગે, વો સુનેંગે બડે ધ્યાન સે એકાગ્રતા સે. આપ સભી સુનના, અભી મેં નમ્ર નિવેદન કરતી હું કે આપ અપને વિચાર ઇસ વિષય પર પ્રસ્તુત કરે. આદરણીય સૂરજભાઈ.
ઓમ શાંતિ. આત્મા કી શક્તિઓ કા વાસ મન મેં હોતા હૈ, इसलिए इसको आत्मा के बल को मनोबल कहा जाता है, विल पावर. तो ये हमारी परफेक्ट थी कभी सतयुग में, संपूर्ण मनोबल के साथ आत्मबल के साथ हम नीचे उतरे. कैसे खत्म हुई? धीरे धीरे जन्म लिया, कर्म किए, संकल्प किए, बोल, इन सब से हमारी ये शक्तियां यूज होती रही. इसको ही कहा गया कि सतयुग में दो कलाएं कम हो गई. कला वो नहीं नाचने गाने की कला, कई लोग उसे कला सोच लेते हैं, ये कला है आत्मा की शक्तियां संपूर्ण थे और थोड़ी कम हो गई, दो कलाएं उसको कहते हैं. द्वापर से मनोविकारों के कारण तेजी से कलाएं उतरी. ऐसा समझ सकते हैं कि दो कलाएं सतयुग में और चार हुई होंगी त्रेता में, कम छह, बाकी 10 द्वापर और कलयुग में हुई, तेजी से उतरी. अब हमारी ये कलाएं बहुत कम रह गई. बाबा तो कहते हैं नौ कला, माना कोई कला नहीं बची, थोड़ी सी ज्योति जग रही है आत्मा की। अब इसको बढ़ाने के लिए मन की शक्तियों को बढ़ाना है हमें, तो ये भी ध्यान रखना होगा ये घटे नहीं और बढ़ने के तरीके अपनाने हैं। घटती कैसे हैं आप सब जानते हैं ने? व्यर्थ संकल्पों से ज्यादा, दूसरा मनोविकारों से, उसका रूप भी संकल्प ही होता है, तेजी से आत्मा की शक्तियां घटती हैं। हमें अपने मन की स्पीड को धीमा करना है। मन व्यर्थ से भी मुक्त हो और मन की स्पीड भी धीमी हो, इतनी हो जितनी सतयुग में थी हमारी। पता है कितनी थी? क्या कहा? 16 कला संपूर्ण नहीं। आपने मेरी बात नहीं समझी। हमारे मन में एक मिनट में इस समय 25 संकल्प उठते हैं और ये ज्यादा होती रहती है स्पीड। घुसा गया तो 40 हो जाएगी, टेंशन चिंताएं हो गई तो बढ़ जाएगी। हमें इसे धीमा करना है, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। और जब ये एक पर आ जाए, एक मिनट में एक संकल्प, तो इसे कहा जाता है बीज रूप स्थिति। इससे हमारी सारी शक्तियां जमा होने लगती हैं। और सतयुग में हमारी स्पीड थी 8 से 10 संकल्प प्रति मिनट। वहां हम पहुंच जाएं तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्प न चलें, ये सबके अपने ऊपर है, क्योंकि ये तूफान बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक सुख संवाद से और शुरू करूं। 2014 जब से शुरू हुआ तो 14 आना माना एक चीज शुरू हो गई थी, जिसका आपको पता होना चाहिए। संसार में किसी को उसका पता नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। क्या थी वो? कि 63 जन्मों के जो भी संस्कार, संकल्प, विकार और विकर्म जो आत्मा में भरे हुए थे, अभी भी हैं, वो इमर्ज होना प्रारंभ हो गए, प्रकट बाहर निकलने लगे। उसके कारण संसार में सभी मनुष्यों के साथ क्या होगा और हो रहा है? संबंधों में टकराव। जो अपने थे वो बहुत तेजी से पराए, विकारों की अति, क्योंकि हमारे चारों ओर पहले ही विकारों के वाइब्रेशंस हैं। वो अंदर से भी उभर गए और बाहर से भी, तो विकारों की उत्पत्ति तेज। इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण विदाई और अगले 5 साल में विदाई ले लेंगे, बहुत सारे जाएंगे। जिनमें विकार ज्यादा बचे हैं, जिन्होंने साधनाएं नहीं की, वो विदाई लेंगे। विकार तो विदाई लेंगे, पर वो भी ब्राह्मण जीवन से विदाई ले लेंगे, पूरा हो जाएगा उनका जीवन। और एक और चीज चल रही है, व्यर्थ संकल्प, जो भरे हुए जन्म जन्म के, वो अब जैसे बाहर आने को हैं। तो आप देखेंगे बहुतों के साथ ये समस्या होगी कि व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं। मेरे पास कितने युवक आते रहते हैं ये समस्या लेकर कि एक संकल्प अगर हमें आ गया कोई, तो बस वो आता ही रहेगा सारा दिन। हम लाख कोशिश कर लें वो ना आए, वो आएगा और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। युवकों में ये माया सब ज्यादा चल रही है, इसलिए अपने मन की स्पीड को धीमा करना, कुछ चीजों से आंखें बंद कर लेना, कुछ चीजों में साक्षी भाव धारण कर लेना, ये बहुत आवश्यक है। मन की शक्ति काम आएगी हमें बहुत। देखो, मन में जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं और ये जाती हैं प्रकृति को। आत्मा का मिलन मन के वाइब्रेशंस के द्वारा प्रकृति से हो रहा है। प्रकृति उस संकल्प के वाइब्रेशंस अनुसार ही रिटर्न करती है, निर्माण करती है। इसलिए हमारा और प्रकृति का ये बहुत ही गहरा संबंध है। इसलिए समय की ये मांग है कि व्यर्थ संकल्पों से बचें। बोलो, अपने हाथ में है या नहीं? जिन्होंने ऐसा मान लिया है अभी अपने हाथ में नहीं है, वो तो बहुत कष्ट पाएंगे और पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट व्यर्थ संकल्पों का ही हो जाएगा। इसलिए अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यर्थ से मुक्त, यही सबसे आवश्यक है। कैसे होंगे व्यर्थ से मुक्त, ये बड़ा टॉपिक है, परंतु दो चार बातों का ध्यान देंगे। अशरीरीपन का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, इसी में पांच स्वरूपों का अभ्यास, ज्ञान के पावरफुल संकल्पों की स्मृति, ये चार चीजें विशेष रूप से यूज करेंगे। इसलिए मैं आप सभी को एक काम देना चाहता हूं, आप सभी रोज की मुरलियों से कम 25 पॉइंट्स लिखेंगे, अपनी व्यक्तिगत डायरी बनाओ। सभी को एक पुरुषार्थ की डायरी बनानी चाहिए, 25 पावरफुल संकल्प, जिनको याद करने से मन में संकल्प हो जाए। ये बात सबको करनी चाहिए, इससे मिलेगा आत्मा को ज्ञान का बल, और वो ज्ञान का बल व्यर्थ से मुक्त करेगा। कैसी हो वो पॉइंट? बाबा की मुरली में एक बात आई कल बहुत अच्छी, याद हो आपको, स्लोगन में था अचल अडोल रहने के लिए, आदि और अनादि स्वरूप को याद करो। तब मुझे याद आई बाबा की एक पावरफुल पॉइंट, ऐसी पॉइंट सबको लिख के अपने पास रखनी है। वो पावरफुल पॉइंट है, अचल अडोल स्थिति के आसन पर बैठे रहो तो विघ्न और समस्याएं इस आसन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। ऐसी पावरफुल पॉइंट्स, इनका स्टॉक अपने पास होना चाहिए, जो आपको अच्छी लगे। मुझे अच्छी लगी मैं लिखता हूं, हर एक की अपनी अपनी होंगी। बाबा ने कहा, तुम तो मेरी याद में मगन रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा ने कहा, संसार में कोई ऐसा दर्पण नहीं जिसमें भगवान दिखाई दे, तुम अपने चेहरे को ऐसा दिव्य दर्पण बनाओ जिसमें सब बाप का स्वरूप देखें। ये सुंदर महावाक्य है, ये मुझे प्रिय लगते हैं, आप अपने माँ बाप के लिखना, जिससे आत्मा को प्रेरणा मिले, जिससे हम उठ जाएं एकदम, याद करें और उठ जाएं। पसंद है ये बात? ज्ञान का बल, उसमें ड्रामा का प्रयोग बहुत अच्छा करना है अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, और आने वाले समय में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ड्रामा की दो तीन बातें मैं आपको सुना दूं, ज्यादा नहीं, 12-15 पॉइंट्स आप उसकी निकाल सकते हैं स्वयं। मैं तीन सुनाता हूं जिनसे हमारा मन निर्संकल्प हो। बस ये पक्का समझ लें, मन जितना निर्संकल्प, मनोबल उतना ही बढ़ा चढ़ा, और मनोबल बढ़ा चढ़ा तो हमारे इस बहुत सारे संकल्प सिद्ध होंगे, अर्थात हम संकल्पों से ही काम करेंगे। ठीक है ये बात? ड्रामा की बात पहली। अपने सब बच्चों को देखो और संकल्प करो, ड्रामा में सब आत्माओं का भाग्य अपना अपना है। चिंता खत्म हो जाएगी। दूसरा संकल्प करो, ड्रामा में सब आत्माओं का पार्ट अपना अपना है, इसलिए यहां किसी का कोई दोष नहीं है। मन शांत होगा, दृष्टिकोण बदलेंगे, इसने मेरे से ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ये सब नहीं। सबका भाग्य अपना अपना है, सबका पार्ट अपना अपना है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी गलती नहीं है, निर्दोष है। तीसरी बहुत पावरफुल पॉइंट है जिस पे आप प्रैक्टिस प्रारंभ करें। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। बहुत ये वंडरफुल महावाक्य है बाबा के, अति गुह्य। सभी अपनी घटनाओं को भी ध्यान में लाओ, आपके परिवार के साथ हो रहा उसे भी ध्यान में लाओ, औरों के साथ हो रहा उसे भी सामने रखो, जरा याद करो इस बात को, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। कितनी पावरफुल बात है, वही होना चाहिए। बहुत गड़बड़ हो रही दुनिया में, पर वही होना चाहिए। इससे ज्ञान की बहुत गुह्यता ख्याल में रहेगी, और साक्षी भाव आने से मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। मन को शक्तिशाली बनाने वाले दूसरी बात, मन में शक्तिशाली संकल्पों की रचना करें। और सब ये याद रखें, हमारे मन में बहुत ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी है। क्रिएटिव एनर्जी माना रचनात्मक शक्ति। हम बहुत पावरफुल संकल्प अपने मन में रचेंगे तो क्या फायदा होगा? यही बात अगर संसार समझ ले, आपके बच्चे भी समझ लें, तो बहुत फायदा हो। आज ही मेरे पास एक अखबार आया था, तो पुराना, उसमें एक हेडिंग था बहुत अच्छा, सारा दिन इंटरनेट पर काम करने का दुष्परिणाम। बच्चे सारा दिन लगे रहते हैं ना, इतनी बीमारी उन्हें हो गई कि अब डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, मृत्यु की ओर। युवक बच्चे, तो उसमें लिखा था नेट का प्रयोग 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब देखो विज्ञान ने बहुत अच्छी चीजें दी लेकिन बड़ी खतरनाक बन गई। क्या होता है इसमें बच्चों को, सारा दिन मान लो आप टीवी देख रहे, कई भाइयों को बहनों को टीवी देखने का बड़ा शौक होता है, सारा दिन चाहे पीस ऑफ माइंड ही है, सारा दिन। सारा दिन देखने से क्या नुकसान होगा? आंखों को नुकसान, कानों को नुकसान, उससे बैड वेव जा रही वो सब जा रही है देह में, उसको नुकसान, और बड़ा नुकसान मन को, कि मनुष्य की अपनी जो रचनात्मक शक्ति है वो काम ही नहीं कर रही है, सारा दिन वो देख रहे हैं ना। और अगर हमारी मन की रचनात्मक शक्ति काम नहीं करेगी तो हम न तो पावरफुल बनेंगे न व्यर्थ से मुक्त होंगे। क्रिएट करने हैं सुंदर संकल्प, क्रिएटिव एनर्जी है बच्चों में। क्या है फिर, पढ़ रहे हैं किताबें रट ली, लेकिन ये पता नहीं उनका और मतलब क्या है, रट ली। इसलिए एमए करने के बाद भी बच्चे कैसे रह जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। हिंदी में एमए कर लिया, चार लाइन लिखो तो 10 गलतियां होंगी। इंग्लिश में एमए कर लिया, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, रट लिया था, क्रिएटिव एनर्जी को यूज ही नहीं किया। इसलिए हम देखते हैं कई बच्चे, कई अच्छे लोग जो साइंटिस्ट बने वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन उनके मन में क्रिएटिव एनर्जी थी, बड़े साइंटिस्ट बन गए वो। जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे उन्होंने रटा था सब कुछ, क्रिएटिव एनर्जी थी नहीं। सभी जान लें हमारे मन में बहुत सुंदर क्रिएटिव एनर्जी है, समझ रही ना माता है, ये अंग्रेजी का शब्द, रचनात्मक शक्ति। हम रचने वाले हैं, इसलिए सुंदर संकल्पों की रचना करें तो व्यर्थ समाप्त। समझ लें जिसने व्यर्थ को समाप्त करना सीख लिया वही संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी है। जिसने व्यर्थ को समाप्त नहीं किया न वो बुद्धिमान न वो ज्ञानी, वो उन्होंने भी रट लिया है बाबा का ज्ञान। यहां भी तो रट लेते हैं ना, सब रट लिया, आसान है रटना। तो इस क्रिएटिव एनर्जी को आप यूज करें। मैं एक ही उदाहरण दूंगा बस, वैसे तो हमारा सबसे पावरफुल संकल्प है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरी बात पे दिलाता हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। यहां से आप संकल्प प्रारंभ करना शुरू करें, कल्प कल्प की विजयी आत्मा। कितनी बार विजय पाई है इस माया पर, हैं? अनंत कहने से थोड़ा मजा कम आता है, मैं कुछ और कहता हूं। अनंत में से 10,000 ले लें, बाकी छोड़ो, हमने इस माया पर और इन विघ्नों पर 10,000 बार विजय पाई है, तो अब विजय पाना कैसा? माताएं बोले पहले, माताओं की आवाज नहीं आ रही, गई तो देख ही रहे मुझे, पता नहीं क्या कह दिया, गुजराती में बोलो। माताओं को रोटी बेलने की रोज आदत है, लाइट चली गई, अंधेरे में रोटी बेल सकती है, मजे से बेल देंगे ना। 10,000 बार माया को जीता है, ये संकल्प रचो अपने अंदर, तो मेरे लिए माया को जीतना खेल है। देखो दो पहलवान हो, पहलवान छोड़ दे, मैं एक उदाहरण दूं, एक हिरण है और एक शेर है, दोनों की लड़ाई कराते हैं। शेर को समझा दिया कि तुम्हें हिरण को खाना नहीं है, केवल युद्ध करना उससे। हिरण भी बहुत तेज है, हिरण शेर के ऊपर कूदेगा तो शेर क्या करेगा, अपना एक पंजा ऐसे कर देगा, हिरण दूर जाके गिरेगा, देखेगा भी नहीं हिरण को, होगा या नहीं, देखेगा भी नहीं, डर की तो बात ही नहीं। हम भी जन्म जन्म के कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। मैं शेर की बात मुझे याद आई, ये मैं उदाहरण देता हूं सब जगह आजकल। देखो जो जिसके बच्चे होते हैं, माँ बाप के भी कई गुण संस्कार बच्चों में रहते हैं, थोड़े या ज्यादा। ऐसा केस तो कोई कोई मिलता है कि माँ बाप बड़े महान हो और बच्चे बेकार निकले, लेकिन कुछ ना कुछ संस्कार अच्छे होंगे। शेर के बच्चे में शेर के सारे संस्कार क्वालिटीज होंगी या नहीं, चलेगा भी तो कैसे, मुंह खोलेगा चिंगाड़ेगा तो कैसे शेर की तरह, या कहेंगे छोटा बच्चा है तो ऐसे न करे, ऑटोमेटिक होगा ना। हम में भी बाबा के सारे गुण संस्कार हैं, ब्रह्मा बाबा के भी हैं, क्योंकि वो पहली आत्मा है सृष्टि की, पूर्वज सबके, और शिव बाबा के भी सारे गुण और संस्कार हमारे अंदर हैं, हम उन्हें बढ़ाएं। तो मैं एक छोटी सी विधि बताता हूं आपको, जिससे मनोबल भी बढ़ेगा, धारणाएं भी बढ़ेंगी, योग में भी आपको बहुत सुख मिलेगा। सिंपल है, अभ्यास हम नहीं करेंगे, केवल सुन लें। आत्मा के सात गुण हैं, सब जानते हैं ना, सब क्या करते हैं योग में, उन्हें याद कर लेते हैं, केवल रिपीट कर लिया, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, बस। इससे काम नहीं चलता। 20 साल हो गए कहते कहते मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और शांति आई नहीं अब तक, गड़बड़ हुई ना कहीं। क्या करना है, एक एक गुण लो, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। अभी इस शब्द को मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, मैं आत्मा बहुत सुखी हूं। जरा 5 बार अपने को स्वीकार कराओ, मैं आत्मा बहुत सुखी हूं। बाबा से बातें करो, हमारा बाबा सुखों का दाता, बाबा आप सुखों के सागर हो, आपने मुझे बहुत सुखी कर दिया, मैं बहुत सुखी हूं। और देखो आपके सुखों में किस तरह वृद्धि होती है। ऐसे रट दिया, मैं सुख स्वरूप हूं और अगले ही क्षण दुखी, इससे फायदा नहीं होगा। स्वीकार करो, मैं आत्मा शांत हूं। बाबा जब से आपका ज्ञान मिला मैं आत्मा शांत हो गई, मैं बहुत शांत हूं। शांति तो मेरा निजी गुण है, स्वभाव है, मैं शांत हूं। स्वीकार करो, गुण आते जाएंगे। सातों गुण ये बाबा के हैं और यही हम में हैं। इसमें आप 10 मिनट लगा सकते हो रोज, और आपको अनुभव होगा कैसे एक एक चीज सहज धारण हो जाती है जीवन में, धारण करने में कठिनाई नहीं होगी। और मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए अशरीरीपन, इस अशरीरीपन के लिए बाबा ने कई बातें कही हैं। अभी अभी संडे की मुरली में आया, देह से न्यारे तो बाप के और सबके। देखिए एक ही लाइन में संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। कोई कहते हैं हमें तो कोई प्यार नहीं करता, हमें तो सब पता नहीं, इस नजर से देखते हैं उस नजर से देखते हैं। और बाबा ने कहा देह से न्यारे हो जाओ तुम सारे संसार के प्यारे बन जाओगे। परिवारों में इसको यूज करो आप, ये दो चीजें यूज करनी है, देह से न्यारे तो सबके प्यारे, और स्वमान में स्थित तो सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा। जो ये कहते हैं जब से हम ज्ञान में चले लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमें आने नहीं देते, वो जरा स्वमान का अभ्यास करके देखो। कोई भी स्वमान जो आपको प्यारा लगे, इन दो चीजों से बहुत फायदा होगा। अशरीरीपन, ये नहीं मैं आत्मा हूं, ये नहीं, पहली प्रैक्टिस ये देह अलग, मैं अलग, बिल्कुल अलग निकल जाओ इससे कुछ क्षणों के लिए, ये देह बिल्कुल अलग, मैं चमकती ज्योति अलग, न्यारापन, दोनों अलग चीजें हैं। ये देह वस्त्र है, जैसे हमारे वस्त्र सामने हो, ये मेरे वस्त्र हैं, ये मैं हूं, अलग। इस न्यारेपन की फीलिंग से मन शांत हो जाएगा और इससे बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ये बहुत जरूरी है समय अनुसार, जिसका मन जितना शांत। अब देखो क्या होगा, ये नहीं आपका मन शांत हो गया तो बाहर की बैड एनर्जी आपके पास आ जाएगी, जब आपका मन शांत होगा तो आपसे इतने पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे जो बाहर की इस बैड एनर्जी को नष्ट करेंगे। जितना मन निर्संकल्प होता है हमसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। घरों में माताएं ध्यान दे, सभी घर में माताएं ज्यादा समय रहती है ना, आप अगर 5 बार भी सारे दिन में अशरीरीपन का अभ्यास कर लें तो आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं मैं आत्मा हूं, समझ गए ना, ये देह अलग मैं अलग, इसे ब्रेन भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। और घर के जितने भी लोग हैं सभी को 2 बार इस नजर से देखना। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि भट्टी समाप्त हो रही है, तो घर जाकर 2 बार केवल सब जो घर के लोग हैं, बच्चे हैं, ये सब देव कुल की महान आत्माएं हैं, इस नजर से सबको देखना। इससे आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक हो जाएंगे। ये सब देवकुल की महान आत्माएं हैं, ठीक है, हो सकता है ना। 5 बार घर में बाबा का आह्वान, भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूं बहुत याद करना। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो मैं भी बहुत करता हूं आजकल, मुझे बहुत भा गई है वो, आप सब रोज 1 बार अवश्य करेंगे। हम वो प्रैक्टिस करेंगे अब प्रैक्टिकल में, तो आप जान भी लेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रेड लाइट करो, सभी महसूस करें मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं, यहां सफेद प्रकाश है, परमानंद है, सामने खड़े हैं बाप दादा, ब्रह्मा बाबा को देखें, उनके अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है, गोल्डन किरणें फैल रही हैं, मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, बाबा मेरे सामने हैं, दृष्टि दे रहे हैं, बाबा ने अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं, और बोले बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए बच्चे विजयी भव। निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। और पावरफुल दृष्टि दी, दृष्टि लेते हम नीचे आ गए, ओम शांति। ये अभ्यास रोज एक बार कर लेना, ठीक है? अच्छा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा बाबा से मिलके आए, बाबा की दृष्टि लेकर आए। बाबा ने कभी बहुत पावरफुल बात कही है, आप में से कोई भी उसे करना चाहे, सवेरे बाप से दृष्टि लो और सारे संसार को दो, सारे संसार को दृष्टि देना। जान लें आप ये कितनी गुह्य और सुंदर बात है। मनसा सेवा होगी इससे, जिधर आप दृष्टि देंगे उधर वाइब्रेशंस फैलेंगे। अभ्यास करो संसार को दृष्टि देने की, चारों दिशाओं में दृष्टि देने की। समझते हैं ना, चारों दिशाओं में खड़े हो जाओ, मुंह करो एक दिशा में, अभ्यास करो। मैं नहीं नहीं अभी खड़े नहीं हो ना, अब तो अभी खड़े हो गए। अपने घर में खड़े हो जाओ, एक दिशा में दृष्टि दो संसार को, इस संकल्प से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कभी संकल्प से मैं पवित्रता की देवी हूँ, कभी इस संकल्प से मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। दृष्टि दो, घर को दृष्टि दो आप, ये सब को काम करना है। भाइयों को ऑफिस है, दुकान है, वहां दृष्टि दो। आने वाले समय में सेवा होगी दृष्टि से। ये मनसा सेवा का बहुत पावरफुल स्वरूप होगा। मैं हंसी में एक बात आजकल लोगों को कहता हूँ, ऐसा समय आ रहा है तेजी से, मुझे ऐसा लगता है 5 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा, जब संसार के आधे लोग रात को सो नहीं पाएंगे, और हम सबको क्या करना होगा, उन्हें सुला के फिर सोना होगा। बोलो, माताएं सुनाएंगी अपने बच्चों को? जो पूर्वज अपने को समझते हैं वो सब हमारी वंशावली हो गई ना, अब आपकी वंशावली रात को जाग रही हो, परेशान हो, आप सो जाएंगे? कई पूर्वजों को भी नींद नहीं आएगी, पहले कहेगा बाबा इन्हें सुलाओ, फिर सोना, वाइब्रेशंस देकर वहीं से संकल्प करके सो जाओ बाबा की गोद में, सब सो जाएंगे। आपके प्यार की थपथपी देते हैं ना माताएं बच्चों को, हाथ से क्या जाता है बच्चों को? प्यार। दूर से ही सबको हाथ दे देंगे, सो जाओ, प्यार जाएगा और सो जाएंगे सब। लेकिन ये काम कौन करेंगे? ये मनसा सेवा हो गई। आपने मनसा सेवा की और बातें तो सुनी होंगी, मैं थोड़ी बड़ी सुना देता हूं। कौन करेंगे ये काम? नहीं, और कुछ, जिनका योग का चार्ट बहुत सुंदर होगा, 4 घंटे से ज्यादा और अव्यक्त स्थिति, सारा दिन अच्छा अभ्यास, सारा दिन अच्छा अभ्यास, पूर्वज, इष्ट देवी, विश्व कल्याणकारी, महान आत्मा, ये सब स्वमान बहुत अच्छे अनुभव में आ गए होंगे। ये केवल रटने की बात नहीं है, मैं पूर्वज हूं, ये रटने से काम नहीं चलेगा, फील करना पड़ेगा। हम बड़े हैं सबके, हमारे कर्तव्य भी बड़े हैं, हमारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। मन की शक्तियां बढ़ेंगी, मनसा सेवा भी होगी। एक मनसा सेवा का रूप और आपको सुना देता हूं, जो भी आप उसे कर सके अवश्य करना। मैं जानता हूं और आप भी अब जान लेंगे, वो सबके बस का नहीं है, पर फिर भी कुछ तो करेंगे ना, करेंगे। वो है आने वाले समय में, ये बाबा के एक संदेश के आधार पर है, बीमार लोगों की बड़ी बड़ी भीड़े तुम्हारे सामने आया करेंगी, तुम एक साथ उन पर दृष्टि डालोगे और वो रोग मुक्त होकर जाएंगे। लेकिन ये काम वही कर सकेंगे जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। देख लो, एक भी निकल जाए अहमदाबाद में ऐसा कोई, एक मैंने बहुत कम कहा, 0 और लगा दो आगे, 10 महान आत्माएं ऐसी निर्विकारी निकल जाएं एक एक बड़े शहर में, क्योंकि दवाइयां काम नहीं करेंगी, दवाइयां मिलेंगी भी नहीं। आपके अहमदाबाद में ही हो चुका है, चिकनगुनिया फैला, दवाइयां ही नहीं थी वहां, क्योंकि इतना था कि सारे स्टोर खाली हो गए। आगे तो दवाई बिल्कुल नहीं मिलेगी, सोने की दवाई भी नहीं होगी, हर व्यक्ति नींद की दवाई मांगने जाएगा, उनकी खत्म हो जाएंगी और दवाइयों से भी नींद नहीं आएगी। एक जगह बैठकर मनसा के द्वारा वाइब्रेशंस फैलाकर सबके दुख दूर करना होगा। माताएं तैयार हो जाओ जल्दी, अब अपनी उलझने छोड़नी पड़ेंगी। माताएं कहीं कहीं उलझी हैं घरों में, मेरा कहने का अर्थ समझ गए ना, ये नहीं कि घर छोड़ के आप चल दो, घर की छोटी बातों में मन को उलझा लेना, ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित रहना, ईश्वरीय सुख बहुत दूर लगे, हमारे घर में तो ये समस्या है वो समस्या है, इसमें उलझ जाना, अब इसका समय नहीं है। अब समय आ गया है, आपके घर में लोग आएंगे और कहेंगे हमें अपने घर का पानी पिला दो, बस एक गिलास पानी दे दो, हमारा चित शांत हो जाएगा, हमारे सिर पे हाथ रख दो, मुझे अपने घर में बैठने दो 10 मिनट, फटा जा रहा है सिर, मर जाएंगे हम तो, बैठ जाने दो। कैसा बनाना पड़ेगा आपको घर? माताएं उत्तर देंगी, महान तीर्थ, पावरफुल वाइब्रेशंस। इसलिए ऐसे घर भी अहमदाबाद में बन जाएं जो महान तीर्थ हों। देख लो कौन कौन बनाएंगे, सोच लो। जो व्यर्थ उलझनों से मुक्त, सच बात तो ये है घरों में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती, सोच सोच कर मनुष्य उन्हें तूफान बना देता है। किसी ने जरा सा कुछ कहा, सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। रोज ऐसे फोन आते रहते हैं, बात बहुत छोटी और सारी स्थिति बिगाड़ ली। कलयुग का अंत आ गया है, आ गया है या नहीं? कलयुग के अंत में अंधकार ही अंधकार होगा या रोशनी? जितनी भी बुराई है वो सारी अब यहां दिखाई देंगी, होंगी या नहीं? इसलिए बहुत चीजों के लिए साक्षी होना ही पड़ेगा। भाई बहने सब तैयार करें अपने को, बहुत चीजों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए एक चीज के लिए मैं सावधान करना चाहता हूँ, बात आपको अच्छी नहीं लगेगी मैं जानता हूँ, फिर भी मेरा कर्तव्य है। धन का बहुत लोभ रखना इस समय अति खतरनाक सिद्ध होगा। कई लोग फंस रहे हैं, ब्राह्मण भी यहाँ से शुरू करते हैं, बहुत पैसा कमाएंगे यज्ञ में लगाएंगे, और जब पैसा बढ़ता है तो यज्ञ तो न जाने किधर चला जाता है, फिर तो माया बढ़ती है, ज्ञान छूटता है। इसलिए पैसा भी ठीक ठीक होना ही ठीक है, बहुत गलत तरीके अपनाना, आजकल बहुत गलत तरीके चल रहे हैं दुनिया में, उससे कभी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, उलझ जाते हैं, कई जेल में चले गए बेचारे, चले थे बहुत धन इकट्ठा करने, जेल में चले गए क्योंकि गलत तरीके अपना लिए। तो कुछ चीजों को स्वीकार करके, अब एक बात और आपके सामने है, रोज आपको एक बार करना है, वो है प्रकृति को वाइब्रेशंस देना। प्रकृति ने हमारी 5000 साल पालना की, शरीर दिए हैं, अब अगर हम उसकी पालना करेंगे तो विनाश काल में वो हमें कमी नहीं होने देगी। पानी भी भरपूर रहेगा, अन्न भी, आपके फ्रिज भरे रहेंगे, स्टोर भरे रहेंगे, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा वो मांगते फिरेंगे। और एक काम और करेंगे, सकास देकर हम प्रकृति के मालिक बन जाएं, क्या होगा इससे? देखो प्रकृति भयानक संहार करेगी। एक कल्पना करो आप, आग लग गई जबरदस्त, बुझाए से नहीं बुझ रही है, विनाश करती जा रही है, सब नष्ट हो रहा है। जो प्रकृति के मालिक होंगे, अच्छे योगी, वो इस स्वरूप में स्थित होकर अग्नि को आदेश देंगे, अग्निदेव अब शांत हो जाओ, और आग बुझती चली जाएगी। ये सब काम होने जा रहा है, लेकिन ये काम उनके द्वारा ही होगा जो श्रेष्ठ योगी बनेंगे, श्रेष्ठ पवित्र और प्रकृति के मालिक। प्रकृति को कैसे सकास देनी है, मैं एक मनोरंजन जैसा तरीका आपको बता देता हूँ। मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, इसके बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कैसे हो मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, मैं तो फरिश्ता ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। मैं आपको अभी कहूँ उठना नहीं कोई भी, कि नीचे बाबा का कमरा है, चलो बाबा के कमरे में बैठ जाओ, कितनी देर लगेगी? अपने घर में अपनी बेड पर जाकर बैठो, कितनी देर लगी? शांतिवन में प्रकाश स्तंभ पर जाकर बैठो, और सुख संवतन में जाकर बैठो, कितनी देर लगी? इसमें कुछ परेशानी की जरूरत नहीं। एक माता अभी अभी मुझे मिली, कहीं मैं भट्टी में था, कहा मेरा एक ही कंफ्यूजन है और बहुत बड़ी समस्या है, फरिश्ता नहीं मेरी बनने आता, ना मेरी समझ में आता, मैं फरिश्ता बन के कैसे जाऊं सूक्ष्म लोक में, मैं तो बनते ही नहीं। यही उदाहरण मैंने दिए, समझ में आ गया। अरे इतना सहज था, हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे, लाइट का शरीर बनाओ, कैसे बनाओ, है तो मोटा ताजा, इतनी परेशानियों की जरूरत नहीं, बस हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, हम वहाँ हैं, नथिंग। ठीक है, तो अभ्यास करना मैं आकाश में, और मैं हूं प्रकृति का मालिक, पवित्रता का फरिश्ता और प्रकृति का मालिक। थोड़ी देर फिर अभ्यास कर लेना, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैलने लगी। एक एक काम करेंगे, बाबा से ले ली, एक मिनट ले ली, अब मुझसे चारों ओर फैलने लगी। प्रकृति के तीन तत्व अग्नि, वायु और आकाश, इन्हें ग्रहण करने लगे। बहुत अच्छा सीन अपना देखो, मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, पवित्र सफेद, ये तीनों तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। अब बची पृथ्वी, मेरे सामने धरती का गोला है, घूम रही है धरती, मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर इस गोले में समा रही हैं। 10-10 सेकंड करेंगे, फिर बचा जल। ऊपर से ही देखो सागर है, दूर दूर तक फैला है सागर, मेरी आंखों से पवित्र किरणें निकलकर सागर में समा रही हैं। फिर बचे, एक चीज और बचती है जिसका ख्याल आपको नहीं है, फिर बचे 9 ग्रह। देव रूप में खड़े हैं आपके सामने, एक एक को दृष्टि दे दो और संकल्प कर दो, तुम सभी मेरे गुड फ्रेंड हो, मित्र हो, मित्र बनकर रहो, तो ग्रह कोई भी कष्ट नहीं देंगे। एक बहुत प्रसिद्ध केस मेरे पास आजकल आ रहा है, कई उसमें बातें आ रही हैं कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही क्योंकि वो मांगलिक है। जानती है माताएं, अब क्या करें, क्योंकि मांगलिक की शादी कराएंगे या तो बनेगी नहीं, या पति मरेगा या वो मरेगी, चलेगा नहीं खेल। इतने केस हो गए हैं, मैं माताओं को समझाता हूं, अच्छा है ना अपनी लड़की को पवित्र रहने दो, पर वो काम होता नहीं, तो उन्हें ग्रहों को वाइब्रेशंस देने चाहिए, तो ग्रह मित्र बन जाएंगे, कई काम ठीक हो जाएंगे। ये प्रकृति को वाइब्रेशंस देने का इंटरेस्टिंग तरीका, मनोरंजन। एक बार रोज जरूर कर लें, आप यहां से जाकर अपना एक ऐसा प्लान बना लें कि रोज एक बार ये अभ्यास करने हैं। बहुत सुंदर अभ्यास बाबा ने सिखाया है, 5 स्वरूपों का, ये सब योग हैं, योग से इनको अलग न समझना। 5 स्वरूपों के अभ्यास से जीवन में बहुत दिव्यता आती है। हमें याद रखना है, योग से हमें विकर्म विनाश करने हैं, योग से हमें प्रभु मिलन का सुख लेना है, अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है, लेकिन 5 स्वरूपों से क्या होगा? आपने संकल्प किया मैं इष्ट देवी हूं, तो इष्ट देवी के जो लक्षण हैं वो जीवन में आने लगेंगे। इष्ट देवी माना दाता, इस देवी माना सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली, बहुत पवित्र आत्मा, ये है ना, वो सब जीवन में आने लगेंगे। इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं, योग, 5 स्वरूप, स्वमान, सब बहुत जरूरी है। इनको अलग अलग करके नहीं देखना है, योग के ही सब भिन्न भिन्न पार्ट हैं। तो यहां से जाकर मनसा सेवा भी रोज करनी है। तीसरी मनसा सेवा की विधि जो बाबा ने सदा बताई है, ग्लोब के ऊपर खड़े हो जाओ, बुद्धि बाबा से लगाओ, अर्थात उसकी किरणें लें पहले और फिर अभ्यास करें ये किरणें मुझसे चारों ओर सारे संसार में फैल रही हैं। आगे चल के ये मनसा सेवा का कार्य बहुत ज्यादा हमें करना पड़ेगा। और आप अभी से एक आदत बना लें, जहां विनाश की बात सुनी, अब कहां विनाश हो रहा है, कश्मीर में आपने सुना, कईयों ने सोचा होगा बड़ा अच्छा हुआ, आतंकवादी बहुत वहां तूफान करते हैं, मरे ये सब, ऐसे सोचने वाले भी दुनिया में बहुत हैं। दूसरों ने सोचा होगा भाई ये तो प्राकृतिक प्रकोप है, विनाश तो होना ही है, ये सब तो होगा ही, ये भी ठीक संकल्प। तीसरों ने क्या सोचा होगा, आपने क्या सोचा, क्या सोचा, सतयुग जल दिया पानी से। अभी आपको सोचना है, जब भी विनाश की बात सुने, अब ये बहुत सुनेंगे, अभी तो साल में एक बार सुनते हैं, ऐसा समय आएगा रोज हफ्ते में एक बार बड़ा, और रोज विनाश ही विनाश, तुरंत अभ्यास करना, मैं फरिश्ता वहां पहुंच गया। कैसे जाऊं अब तो समझ में आ गया ना, प्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कोई ट्रेन, बस मैं वहां हूं, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे नीचे फैल रही हैं, सबको मिल रही हैं। ये वाइब्रेशंस कई काम करेंगे, किसी को देह से मुक्त होने में मदद करेंगे, किसी को बचाएंगे प्रकोप से, किसी के चित्त को शांत करेंगे, जो जिंदे रहेंगे वो बहुत दुखी होंगे ना, उनके चित्त को शांत करेंगे, और किसी को यह आभास देंगे कि हमारे इष्ट देव यही हैं, देखो ये दिख रहे ऊपर, सहारा महसूस होगा। तो ये प्रैक्टिस डाल लें, जहां भी सुने तुरंत वहां पहुंचे और वाइब्रेशंस दिए। यहां से भी दे सकते हैं, हम यहां खड़े हैं, मैं शिव शक्ति हूं, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है और मुझसे शक्तियों की किरणें निकली और वहां पहुंच रही हैं, ये बिल्कुल सहज होगा। तो इस तरह अपनी मन की पावर को बढ़ाएंगे, योग को भी बहुत बढ़ाएंगे और सकास देने की प्रैक्टिस को भी बहुत बढ़ाएंगे। लास्ट बात इसमें मैं यही कहूंगा, बाबा का महावाक्य याद कर लें आप, ये भी बहुत सुंदर महावाक्य है, लिखने योग्य याद करने योग्य, सकास देना की सेवा में बिजी हो जाओ तो तुम्हारे विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। सकास देने की सेवा में बिजी हो जाओ तो तुम्हारे विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सकास से एक ही साथ करोड़ों मनुष्यों को मदद मिलेगी। हम एक मनुष्य को भी मदद करें तो कितना बड़ा पुण्य होता है, और ये होगी करोड़ों को मदद, तो उस मदद से हमें जो पुण्य वापिस आएगा उससे हमारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे, आपके परिवारों में भी सुख रहेगा, बच्चे भी चरित्रवान होंगे। तो मैंने आपको कहा, भूलना नहीं, घर में भी सकास देनी है, लक्ष्य बना लो इसको, घर में सकास देनी है, प्रकृति को सकास देनी है, और अपने योग को कर्म करते हुए ही बढ़ाते चलना है। कर्म में ये बहाना ही नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, कर्म में जो भी हम कर्म करें उससे कोई अभ्यास जोड़ दें। तो अब यहाँ आए, यहाँ बहुत सुख मिला ना, बहुत सुख मिला। आपकी इच्छा रही होगी, पर हमारी भी ये बहुत इच्छा थी कि ब्राह्मण बच्चे मधुवन में आए, पांडव वन में आए, रहें यहाँ, इस भूमि का फायदा उठाएं। तो ये बाबा ने इच्छा पूर्ण की। अब इस सुख को कायम रखना, और जैसा मैंने शुरू में कहा, इस बात को हल्का न करना, अपने पूरे पुरुषार्थ का प्लान बना देना। आज घर जाकर ये करेंगे, फिक्स नियम कर दो, बाबा को यही संकल्प दे दो, ये करेंगे, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ में रहने से समस्याएं समाप्त। ओम शांति। चलो अब ऐसे योग करेंगे, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, मैं शिव शक्ति और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान।
संग संग रहें।